हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, यहाँ हजारों कहानियां हैं आपके लिए। अबीर ने जोया से शादी कर ली थी और कहा था, मेरी नज़रों से देखो तुम कितनी ऊंचाई पर हो, मुझे फ़र्क नहीं पड़ता तुम्हारे साथ अतीत में क्या हुआ क्या नहीं, मुझे बस इतना पता है कि तुम मेरी बीवी हो, अबीर राठौर की इज्जत हो। और हाँ, रही बात उन लोगों अरमान अरहम राजवीर को सज़ा देने की, तो उन्हें सज़ा तुम खुद दोगी, मैं उसमें तुम्हारी कोई मदद नहीं करूँगा। लेकिन हाँ, उनके सामने भेजने से पहले मैं अबीर राठौर तुम्हें खुद तैयार करूँगा, तुम्हें इस लायक बनाऊँगा कि तुम उन लोगों के सामने हिम्मत के साथ खड़ी हो सको। जोया केवल खाली खाली नज़रों से अबीर को देख रही थी और वो अबीर को बिना कुछ बोले अपने कमरे में भागती हुई चली गई थी। अकरम और रिया की आंखों में खुशी के आंसू थे। अकरम को अबीर पर पहले से ही भरोसा था, उसे यकीन था कि अबीर ज़रूर जोया से सच्ची मोहब्बत करता है, क्योंकि अपनी हल्दी के फंक्शन वाले दिन अकरम ने अबीर की आंखों में जोया के लिए एकदम सच्ची और मज़बूत मोहब्बत देखी थी। और उसी वक्त वो जान गया था कि अबीर राठौर से बेहतर जोया के लिए और कोई जीवनसाथी नहीं हो सकता था, और आज वाकई उसकी बात सच साबित हो गई थी। अकरम ने जैसा चाहा था, अबीर जोया के लिए बिल्कुल वैसा ही जीवनसाथी था। वहीं दूसरी ओर मेहर मिस्टर रॉय के पास जा पहुंची थी। मिस्टर रॉय ने जैसे ही एक नज़र मेहर की ओर देखा, तो वो उसे देखकर अपनी जुबान अपने होठों पर फेरने लगा था। मेहर ने उसकी ये हरकत अच्छे से देख ली थी। मिस्टर रॉय एक अधेड़ उम्र का व्यक्ति था, जो दिखने में बेहद सांवला सा था, लेकिन शरीर से हष्टपुष्ट था। मेहर उसके पास गई और जाकर टांग पर टांग रखकर उसके सामने बेधड़क होकर बैठ गई थी। ना जाने डरपोक सी मेहर में इतनी हिम्मत कहाँ से आ गई थी। हॉस्पिटल में अरमान को पीटता हुआ देखकर और राजवीर की वो शैतानी हंसी उसके कानों में जहर घोलने का काम कर रही थी, जो बार बार मेहर के दिल में नफ़रत का जहर भर देती थी। मेहर ने मिस्टर रॉय से कहा था, आई थिंक मिस्टर रॉय, आप मेरे बारे में अच्छे से जानते हैं, मैं कौन हूँ, फिर भी मैं एक बार फिर अपना इंट्रो दे देती हूँ, मेरा नाम मेहर है, मेहर ठाकुर। ऐसा कहकर मेहर ने अपना हाथ हैंडशेक करने के लिए मिस्टर रॉय की तरफ बढ़ाया था। मिस्टर रॉय उठे और उन्होंने मेहर का हाथ पकड़कर चूम लिया था। मेहर को उनका ये अंदाज काफी ज्यादा बेहुदा लगा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर पाई थी। मेहर ने उसे कहा था, मिस्टर रॉय, मैं यहाँ क्यों आई हूँ ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं, मैं आपको मुँह मांगी कीमत देने के लिए तैयार हूँ, प्लीज़ आप मेरे भाई को कुछ न कुछ करके इस अनुराधा केस से बचा लीजिए, मैं वादा करती हूँ मैं आपको मुँह मांगी कीमत दूंगी। मिस्टर रॉय मेहर को ऊपर से लेके नीचे तक देख रहे थे और वो बात करती हुई मेहर के कभी होठों को देखता तो कभी उसकी हल्की हल्की नज़र आती चेस्ट के ऊपरी हिस्से को देखता। मेहर उसकी नज़रें भांप चुकी थी और उसे अपनी ओर इस तरह से देखता देख मेहर दूसरी ओर देखने लगी थी। तब मेहर ने आखिर में कहा, मिस्टर रॉय, तो मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या आप तैयार हैं मेरे भाई का केस लेने के लिए। मिस्टर रॉय ने मेहर की ओर देखा और तभी मिस्टर रॉय उठे और इधर उधर टहलने लगे थे और बोले थे, देखो तुम अच्छे तरह से जानती हो अरमान ठाकुर का केस कितना ज्यादा बिगड़ गया है, सारे सबूत उसके खिलाफ हैं, उसे फांसी या उम्र कैद होकर ही रहेगी, ऊपर से सारा देश मीडिया ने अरमान ठाकुर को कोर्ट में गुनाहगार साबित होने से पहले ही देश उसे दोषी साबित कर चुका है, हर तरफ अरमान को फांसी या उम्र कैद देने की मांग हो रही है। ये सुनते ही मेहर तड़प गई और वो तुरंत मिस्टर रॉय के पैरों में गिर गई और उसकी एक टांग पकड़कर बोलने लगी थी, नहीं नहीं मिस्टर रॉय, प्लीज मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए, आप प्लीज मेरे भाई को बचा लीजिए, प्लीज मिस्टर रॉय प्लीज। ऐसा कहकर मेहर रोने लगी थी, जबकि घुटनों के बल बैठने से मिस्टर रॉय को मेहर का आधे से ज्यादा हिस्सा गाउन में से दिखने लगा था। अब मिस्टर रॉय की नीयत मेहर पर खराब हो चुकी थी और उसने अपने दोनों हाथों को मेहर के नंगे कंधों पर रख दिया और उसे उठाने लगा था। मेहर सुबकती हुई उठ खड़ी हुई थी और मिस्टर रॉय का साथ पाते ही वो मौका देखकर उसके गले लग गई थी। मेहर वहाँ आने से पहले क्रिमिनल लॉयर आदित्य रॉय के बारे में पूरी छानबीन करके आई थी और उसे ये पता चल चुका था कि मिस्टर आदित्य रॉय की बीवी का 7 महीने पहले ही एक एक्सीडेंट में निधन हो गया था, इसलिए वो अब बिल्कुल अकेला था और 7 महीनों के बाद उसे किसी औरत के जिस्म की गर्मी हुई थी तो वो खुद को रोक नहीं पाया था और वो मेहर को सांत्वना देने के लिए उसके आधे से ज्यादा नंगी पीठ पर हाथ फेरने लगा था। मेहर ने गुस्से के मारे अपने दोनों हाथों की मुठ्ठियाँ भींच रखी थी, लेकिन वो जानती थी उसका ये कदम ही उसके भाई को बचा सकता था, तो एकाएक मौका मिलते ही उसने अपने गाउन की जिप खोल दी थी और देखते ही देखते उसका गाउन उसकी टांगों को चूमता हुआ एक झटके से नीचे जा गिरा था। अब मिस्टर आदित्य रॉय का खुद पर कंट्रोल खत्म हो चुका था और वो उस पर भूखे भेड़िये की तरह टूट पड़ा था। वहीं दूसरी ओर जोया ने अपने कमरे में जाकर खुद को लॉक कर लिया था और वो अपने कमरे में अंधेरा करके बेड से नीचे ही अपना सिर घुटनों में दिए हुए बैठी थी। जोया की आंखों से आंसू रुकने का नाम ही नहीं ले रहे थे। आज उसके साथ जो कुछ भी हुआ था वो सब उसके सर के ऊपर से जा रहा था। वो चाहकर भी अबीर पर यकीन नहीं कर पा रही थी। अब सीधी साधी मेहर बोल्ड मेहर बन चुकी थी। मेहर को लग रहा था कि आज उसकी इज्जत नहीं लूटी है बल्कि आज राजवीर सिंघानिया की इज्जत बर्बाद हुई है, क्योंकि मेहर की शादी अब राजवीर से हो चुकी थी। सो अब मेहर की अपनी कोई इज्जत नहीं थी। अब अगर किसी का कुछ था तो वो थी राजवीर की इज्जत। इसलिए अब मेहर ने क्रिमिनल लॉयर आदित्य रॉय के साथ रिश्ता बनाकर वो ऐसा फील कर रही थी मानो उसने राजवीर से थोड़ा बहुत बदला ले लिया हो। मेहर के साथ फिजिकल होने के बाद आदित्य रॉय के चेहरे पर एक मुस्कान तैर गई थी। आदित्य रॉय ने मेहर के फोरहेड पर किस करते हुए कहा था, आज तूने मुझे खुश किया है, अब तू देख तेरे भाई को ये हार्मी लॉयर कैसे जेल से बाहर निकालता है, जस्ट वेट एंड वॉच। मेहर उसकी ओर शुक्र भरी नजरों से देखने लगी थी और उसे दो घंटे पहले क्या क्या हुआ था वो सब याद आ गया था और उसे ये भी रियलाइज हो चुका था कि उसने कितना बड़ा कदम उठाया था। वेल, अब जो होना था वो हो चुका था, मेहर का काम हो गया था। मेहर जल्दी ही आदित्य रॉय से विदा लेकर वहाँ से रात के अंधेरे में निकल चुकी थी। पूरे रास्ते उसे सब कुछ याद आने लगा था जो आज वो गुस्से में कर बैठी थी। वेल, रात के करीब 2 बजे मेहर ठाकुर मैंशन पहुँची थी। गाड़ी से बाहर निकलने से पहले मेहर ने अपने आंसुओं को अच्छे से साफ किया, गाड़ी में रखे हुए छोटे से मिरर के द्वारा अपना हल्का टचअप किया। हालांकि रात के 2 बज रहे थे, उसे ये सब करने की कोई जरूरत नहीं थी, लेकिन वो अपने घर के किसी नौकर के सामने भी ऐसे हालत में नहीं जाना चाहती थी। ना जाने क्या चीज थी जो उसे पूरी तरह से बेखौफ होने से रोक रही थी। मेहर ने अपना हुलिया ठीक किया और फिर गाड़ी से बाहर निकल गई और सीधा अपने कमरे की ओर बढ़ने लगी थी। पूरा का पूरा घर खाली था, घर में कोई भी नहीं था, लेकिन फिर भी मेहर दबे पांव अपने कमरे की ओर जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो वो घर की दीवारों को भी ये पता नहीं चलने देना चाहती थी कि वो घर पर आ चुकी है। मेहर जल्दी से अपने कमरे में चली गई थी। उसने देखा उसके पूरे के पूरे कमरे में अंधेरा था। मेहर दी लाइट जलाने की जहमत नहीं उठाई थी और वो सीधा बेड का अंदाज़ा लगाकर उस पर ऊंधे मुंह लेट गई थी।
अभी मेहर को लेटे हुए कुछ ही देर हुई थी कि तभी उसके कमरे की लाइट अचानक से जल उठी थी। मेहर जो कि ऊंधे मुंह लेटी हुई थी, तुरंत उसे एहसास हो गया था कि उसके कमरे की लाइट जल चुकी है। मेहर चौंक कर उठ बैठी थी और जल्दी से उसे सामने सोफे पर राजवीर सिंघानिया सिगरेट का कश लेते हुए बैठा दिखाई दिया था। राजवीर को देखते ही मेहर के जिस्म में एक कमकपी सी छूट गई थी। मेहर आंखें फाड़ कर उसे देखने लगी थी। राजवीर भी उसे ही देख रहा था। वहीं दूसरी ओर अरहम को होश आ गया था और अकरम को ये इन्फॉर्मेशन मिल चुकी थी। उसने खाना टेबल पर लगाती हुई रिया से बता दिया था कि अरहम को होश आ गया है। अचानक ये सुनकर टेबल पर प्लेट लगाती हुई रिया के हाथ रुक गए थे और फिर रिया ने मजबूती से कहा था, ठीक है, आप एक काम करो, बाहर मेरा इंतजार करो, मैं अभी आती हूँ। ऐसा कहकर रिया ने एक नौकर को बुलाया और बोली थी कि अबीर साहब से कह देना सब खाना तैयार है, वो जोया दी के साथ खाना खा लें और हम दोनों बाहर जा रहे हैं, हम लोग बाहर ही खाना खाकर आएंगे। तभी दूसरी ओर अबीर भी जोया का दरवाज़ा खटखटाकर थक चुका था और उसे अब किसी अनहोनी का अंदेशा होने लगा था। तभी अबीर ने जोया के कमरे की खिड़की की ओर रुख किया और उसने देखा खिड़की भी अंदर से बंद है। तब अबीर ने अपने गार्ड्स को बुलाया और बोला, मुझे 5 मिनट के अंदर अंदर ये कमरा खुला हुआ चाहिए। ये सुनते ही सब गार्ड एक दूसरे का मुंह देखने लगे थे और ये अबीर राठौड़ का हुक्म था जो उन्हें एनी हाउ पूरा करना था। जल्दी ही सब गार्ड उस दरवाजे को खोलने की जद्दोजहद करने लगे थे। एक गार्ड ने फायर मशीन का यूज किया और उस दरवाजे के लॉक को अंदर से पिघला दिया था और जल्दी ही दरवाजा खुल चुका था। अबीर ने सब गार्ड को वहां से जाने का हुक्म दे दिया था और जल्दी से अबीर जोया के पास गया और उसने जोया को देखा जो बेड के पास सिर झुकाए हुए बैठी हुई थी। अबीर जल्दी से उसे आवाज देने लगा था लेकिन जोया ने कोई जवाब नहीं दिया। तब अबीर ने जैसे ही उसके कंधे को छुआ तो जोया अबीर की बाहों में झूल गई थी, वो बेहोश हो चुकी थी।